है क्या? अंतर अंग है, बाहरी अंग नहीं है। अंतरंग माने जिसके बिना रहा नहीं जाए, वो है अंतरंग, जिससे कि कुछ भी छिपाया नहीं जाए, ये व्यक्ति अंतरंग होता है। जैसे गांव भर में बहुत से आदमी हैं, शहर मथुरा में बहुत लोगों से मित्रता है, किंतु भाई और उन गांव वालों में कौन अंतरंग है? अपना भाई। किंतु भाई और पुत्र में अपना अंतरंग कौन होगा? पुत्र होगा। पुत्र में और पत्नी में कौन अंतरंग होगी? पत्नी अंतरंग। पत्नी में और अपने अंग में कौन अंतरंग है? अपने अंगों में हाथ है, सब कुछ, किंतु अंतरंग इसका सबसे अंतरंग कौन है? यदि हाथ को काट करके भी इसको बचाया जा सकता है तो बच सकते हैं। इसी तरह से उसमें भी अंतरंग जीवात्मा, उसमें भी जो परमात्मा है उसके अंतरंग हैं, किंतु अपने और पराये में भेद न करके अपना कुछ भी जिसे छिपाया नहीं जा सके वो उसको अंतरंग कहते हैं। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग हैं। तहां ते जाने न प्रभु ये सब प्रसंग, महाप्रभु अंतरंग हैं इसलिए उनके भीतर की बात को समझ जाते हैं। स्वरूप दामोदर जी अंतरंग अब चैतन्य, सो स्वरूप दामोदर नोज एवरीथिंग व्हाट इज इन चैतन्य महाप्रभुज हार्ट, व्हाट इज हिज मोड, दूसरा कोई नहीं समझेगा। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भाव सुख, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। राधिका जी की भाव और मूर्ति दोनों महाप्रभु जी के अंतर में, मूर्ति कैसे? अंग कांति के द्वारा। सब समय राधिका जी की ही चिंता करते हैं और उन्हीं के भावों को ग्रहण किए हैं, अथवा भाव की मूर्ति महाभाव, ये सब समय उनके अंदर में है। इसी तरह से महाभाव में मिलन और विरह, मिलन में आनंद, विरह में विष ज्वाला, दोनों उनके अंदर में उठती है और उसी का आस्वादन करते हैं। आज यहीं तक रहे, कल विशेष
व्याख्यान। मंदी कृतेंदी वरम जड्डं जागुडरो चिसांग विदधतंग पट्टंबरस्य श्रिया इंदारण्य निवासिनम हृदिलसत् दामाभिरामोदरम राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायिं दामोदरम भक्त्या विहीनाय पराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर्याजिहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञैराधीतं न मां चरणान्ति। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। राधा जी श्रीमती राधिका जी की महिमा का वर्णन किया, उनके भाव का स्वरूप का वर्णन किया, जिसको लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण रूप का स्वादन करना चाहते, विशेष करके तीन माधुरियों को। उन्होंने इस सब को देवी कृष्णमयी प्रोक्ताराधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा इत्यादि की व्याख्या की। अब वही बतला रहे हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, इसको हमने बतलाया। राधा जी और कृष्ण दोनों एक ही हैं, उसको पहले श्लोक में बतलाया। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति स्मात एकात्मानावपि भूपूरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्या प्रकट मधुना तद्वयंच ऐक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। कृष्ण ही महाप्रभु जी कृष्ण के स्वरूप हैं, एक ही तत्व दो रूपों में राधा और कृष्ण के रूप में प्रकटित हुआ, दो नहीं है। विलास रस आस्वादिते धरे दुई रूप। और फिर यहाँ भी आगे भी कह रहे हैं राधा कृष्ण ऐसे एक सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित और अन्य विलास रस आस्वादन हेतु। पहले कहा है अन्यान्य विलास रस आस्वादन हेतु, एक ही वस्तु ये दो रूपों में कभी प्रकाशित होती है, कभी एक रूप में। एक रूप में चैतन्य महाप्रभु और दो रूपों में राधा कृष्ण, ये दोनों ही स्वरूप नित्य हैं। इसी चीज के लिए बतला रहे हैं कि कैसे दोनों एक है। दिखाई तो दो पड़ता है किंतु कैसे एक है इस चीज को ये बतला रहे हैं। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा जी पूर्ण शक्ति हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों में वेद में उपनिषदों श्रीमद् भागवत में सर्वत्र ही शक्ति और शक्तिमान को अभेद बतलाया गया है। इसलिए ये कह रहे हैं, क्यों ये बतला रहे हैं, जब एक ही वस्तु है तो राधा जी कहाँ से आ गई या कृष्ण ही कहाँ से आ गए, कैसे भेद है और कैसे अभेद है, उसके लिए उदाहरण दे करके बतलाया। एक ही वस्तु है मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद, मृग मद कस्तूरी, कल मैंने बतलाया था कस्तूरी और उसका गंध, आग और उसका ताप, समुद्र उसकी तरंगे, उसी तरह से सभी चीजें, विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें शक्ति और शक्तिमान न हो। ये एक मिठाई है जिसे हम देख रहे हैं, उसमें मिठास क्या चीज है, मिठास चीज है क्या, चीनी से अतिरिक्त है या चीनी में ही है मिठास। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से बतलाने के लिए समझने के लिए कह रहे हैं। भक्ति के लिए यह सब समझने की कोई जरूरत विशेष नहीं है, विशेष भक्ति के लिए यह सब जरूरत है, साधारण रूप में यह समझ में आएगा नहीं, ये भी एक तरह का कसरत है दिमाग का। आज एक बड़े विद्वान यहाँ के माथुर चतुर्वेदी के कहे भक्ति को जानने के लिए विद्या की जरूरत है और शास्त्रों की जरूरत है जानने की। तो मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और अपनी मैया का स्तन पकड़ करके दूध चूसता है, किसी ने बतलाया नहीं। मनुष्य के लिए तो मानो जो मैया लेकर के स्तन देगी, किंतु हिरण गायें उनका बच्चा देते ही गाय की कोई चेष्टा नहीं होती और बछड़ा क्या करता है, फुदक करके उठ जाता है दोनों पैर पर मैया के स्तन में पहुंच जाता है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आई, कौन विद्या से आया, कौन व्याकरण से और किस चीज से, तो पूर्व का संस्कार, तो इसी को समझिए। भक्ति के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं है, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भक्ति मिल जाएगी, बल्कि और वो लुप्त हो जाता है। तो बड़े बड़े ये सब आचार्यों ने ये सब किया है, व्याकरण लिखा जी गोस्वामी ने, और इसके लिए कितने ग्रंथ लिखे हैं, तब ये सब बेकार के हैं नहीं। जो दिमागी कसरत करना चाहता है वो करे, किंतु प्रेम तो स्वभाव सिद्ध है और अनन्य निरपेक्ष है, इसके लिए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, साधु संघ की जरूरत है। साधु संघ में श्रवण से, जैसे श्रुतियां कैसे लोग सीखते थे, सुनते सुनते हो जाता था, ऐसे ये सब भी सुनते सुनते अविद्या का मल दूर होगा, भक्ति की प्रवृत्ति अपने आप उदित होगी। तब हाँ, कुछ प्रचार इत्यादि के लिए, दूसरों को बतलाने के लिए कुछ आवश्यकता है, किंतु उसमें भक्ति के लुप्त होने का भी डर रहता है। जो ज्ञान के द्वारा तब भक्ति आती है, ऐसा भाव आ सकता है। हमने उदाहरण भी दिया गौर किशोर दास जी महाराज का, हरिदास ठाकुर का दिया, कोई वेद विद्या की जरूरत, ज्ञाने प्रयासम का भी उसमें दिया। इस तरह से भक्ति तो स्वतंत्र वृत्ति है, ये कुछ दार्शनिक विचार है कि इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन लोगों को देकर के समझाने के लिए, नहीं तो समझे मूर्खों की चीज है ये भक्ति, ऐसा न समझे। एक आदमी मान ले कि ये सब तत्व नहीं जानता है, और कृष्ण में प्रेम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, शबरी को ये सब जो जो साधारण भक्ति भी मान लिया जाए तो उसमें क्या है? गोपियों को भी देख लो एक उदाहरण के लिए, इसलिए विद्या और सब चीजें उसके पीछे पीछे दौड़ती है। मृगमा तारगंध जैसे अविच्छे, प्रत्येक वस्तुओं में एक शक्ति और शक्तिमान का भाव है, प्रत्येक वस्तुओं में। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, राधा जी पूर्ण शक्ति है, इसमें अचिंत भेदाभेद का भी तत्व दिया, आगे इसमें लाएंगे अचिंत भेदाभेद का। मृगमत तार गंध जैसे अभिच्छेद, मृगमत और उसका गंध, कस्तूरी उसका गंध, अग्नि और उसकी उसका ताप, कोई भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो कहने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, कोई जरूरत है जब है ही नहीं है तो नहीं दिखता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही शक्ति का भी विचार आया है, शक्तिमान का भी विचार आया है। अब जैसे जीव तत्व के विचार संबंध में समझो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनात, हमारा अंश जीव है, और चैतन्य चैतामृत में इसको इस रूप में वर्णन किया, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इसमें भी ये लागू होगा, जीव क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। क्यों जीव नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति, ये जीव क्या है, शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है। अब इसको इस रूप में समझो, कृष्ण स्वांश जब के स्वांश हैं, वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में उनका जो अंश होता है वो स्वांश है, और जब कृष्ण अपनी तटस्था शक्ति से युक्त रहते हैं तब उनका अंश होता है, या तब वो जीव है। केवल शक्ति से ही परिणाम नहीं है, केवल शक्ति के परिणाम से ही नहीं होगा, नहीं तो और सब शास्त्र वाक्य झूठे हो जाएंगे। इसलिए इसको इस रूप में लेना पड़ेगा, जो तटस्था शक्ति का ही परिणाम है किंतु उसमें कृष्ण का भी अंश है, शक्तिमान भी है। कैसे होता है, स्वरूप शक्ति कृष्ण में है, है ना? अच्छा, राधा जी पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। अच्छा, कृष्ण में अपना अपनी कुछ और शक्ति है कि नहीं है, कि कृष्ण अलग है, स्वरूप शक्ति को अलग कर दिया जाए तो कृष्ण जो बच रहे उसमें क्या चीज है? यदि दोनों में भेद है ना, कृष्ण को अलग कर दो, अस्वरूप शक्ति को अलग कर दो, नहीं, यही सब दार्शनिक विचार, ऊंट विचार हैं ये सब। कृष्ण में फिर भी रहेगा कुछ
अलग, नहीं
अलग तो होगा नहीं। तभी कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान है, कृष्ण से शक्ति निकाल दिया जाए ऐसा कभी तो हो नहीं सकता। तो स्वरूप शक्ति जो राधा जी हैं और इनके जो विविध शक्तियां हैं, इनको निकाल भी दिया जाए तो कृष्ण बिना शक्ति के नहीं रहेंगे,
निकाल ही नहीं सकते। आप कैसे निकाल देंगे?
यदि मान लिया कि किसी तरह से निकाल भी दिया, कृष्ण अघटन घटन प्रत्यक्षी शक्ति वाले हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, तब कृष्ण का परिचय क्या रहेगा? अभी इसको ठीक से समझो, कस्तूरी कहीं छिपी हुई है, हमने कपड़े के अंदर में छिपा दिया या घर के अंदर में छिपा करके रखा, उसके गंध को छिपा सकते हैं कि नहीं? मुश्किल है। हवा यदि रहेगी तो वो हवा उसको चारों तरफ में फैला देगी और वो घर में कस्तूरी बैठी रहेगी। ठीक ऐसे ही कृष्ण हैं, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ते किंतु उनकी शक्ति का विलास सर्वत्र अनुभूत होता है। ये जो कुछ हम देखते हैं चीज जगत में, जड़ जगत में, इस जड़ जगत में, उनकी शक्ति का वैचित्र चारों तरफ, यही गंध है। एक बात और समझो, कृष्ण उनकी शक्ति है, अलग तो नहीं है। यदि अलग भी कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है तो उन दोनों का अनुप्रवेश है परस्पर। अनुप्रवेश माने क्या? जीव गोस्वामी कहते हैं उसका उसमें प्रवेश, इसका इनमें प्रवेश, सब समय सदा के लिए। इसलिए जो कुछ करते हैं कृष्ण, वो शक्ति के बल से करते हैं। कृष्ण का अपना परिचय है, आनंदम एम ब्रह्म, ब्रह्म आनंदमय है, ठीक है ना? आनंद। अब ये जो आनंदमय है कृष्ण का अपना ये स्वरूपगत स्वरूप है उनका, किंतु दूसरी जगह लिखा रसो वैसह, वो रस स्वरूप भी हैं। रस किसको कहते हैं? दो प्रकार से रस बनता है, एक होता है रस का उपकरण और एक रस का आस्वादन जो करता है। आ रहा है समझ में? एक तो रस स्वरूप है, जैसे चीनी है, पानी देने पर या मुख बंद देने पर रस हो जाती है, मिठास उसमें हो जाती है, और कोई मिठास का आस्वादन करने वाला होता है। एक आस्वाद्य, एक आस्वाद, दोनों, एक आस्वाद्य है और एक आस्वादक है, तब वो रस होता है। कृष्ण ऐसे हैं, आनंदमय हैं किंतु साथ साथ रसमय भी हैं। ये जो क्रियाएं जो होती हैं यही होती है उसमें, जो सर्वशक्तिमत जो राधा जी हैं उनके वजह से वो रस स्वरूप भी हैं, और उनमें रसास्वादन की प्रवृत्ति ये शक्ति के द्वारा होता है। फिर से देखो, एक मिठास चीनी में है, ये मिठास उत्पन्न कौन करती है? कोई शक्ति है, तो ये मिठास उत्पन्न करने वाली, रस उत्पन्न करने वाली कौन है? ये शक्ति, ये स्वरूप शक्ति, ये राधिका जी। और वो आनंद है, कृष्णम आनंदम अयम ब्रह्म, आनंद है। तो आनंद है तो यहाँ पर आस्वादक तो है नहीं, तो ये कृष्ण में वो आनंद की, आनंद को आस्वादन करने की प्रवृत्ति भी कृष्ण में यही शक्ति जगाती है, इसलिए वो आस्वादक हो जाते हैं। क्यों? वो आत्माराम है, आत्मकाम है, किंतु उस आत्मकाम में भी, आत्माराम में भी रसास्वादन की प्रवृत्ति, आस्वादक होने की प्रवृत्ति कौन जगाती है? ये श्रीमती राधिका। इसलिए राधा जी पूर्ण शक्ति हैं, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। वो ब्रह्म के रूप में, आनंद के रूप में पूर्ण हैं, और राधा जी क्या हैं? आस्वादन करने में, रस स्वरूप होने में ये पूर्ण हैं, आस्वादन कराने में। अब उनका इनमें अनुप्रवेश, इनका उनमें प्रवेश, आ रहा है समझ में? क्योंकि एक ही है ना, इसलिए कृष्ण में राधा जी के भाव आ जाते हैं और उनमें उनका। इसलिए जीव जो बतला, अब जीव पर चलो थोड़ा सा, जीव तटस्थ शक्ति है, कृष्ण में सब समय है। अब कृष्ण का जीव में अनुप्रवेश, कौन कृष्ण? वही जो आनंद है और ब्रह्म है, वो जीव में भी उसका अनुप्रवेश, और जीव का उसमें, जीव शक्ति का उनमें प्रवेश। इसलिए तटस्था शक्ति से युक्त जो कृष्ण है, उसी का अंश जो है ये जीव है। ये जो जीव में तटस्थ शक्ति है, ये है कहाँ से, आई कहाँ से? स्वरूप शक्ति नहीं रहती तो आता? इसलिए स्वरूप शक्ति की एक अणु ये शक्ति कहिए। राधा जी में सब शक्तियां हैं, किंतु कभी कभी ऐसा वो करती हैं जो अपनी केवल तटस्थ शक्ति को रख करके कृष्ण से युक्त होती हैं, उस समय ये हो। इसलिए जीव में सच्चित आनंद तीनों के ही आंशिक प्रवृत्ति है, और जीव में भी स्वयं उपकरण है इस भक्ति का, स्वरूप का भी उपकरण है। इसलिए यहाँ पर जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ने पर उसमें मुंह मोती हो जाती है, केला में पड़ने पर मोती नहीं होगा, पत्थर पर पड़ने से कुछ भी नहीं होगा, जिसमें जो उपकरण है, हाथी के मस्तक पर पड़ने से गजमुक्ता हो जाएगा, कपूर हो जाता है, केले के पत्ते में कपूर हो जाएगा। ये सब शक्तियां कहां से आई? ये जो हो रही है, ये चीजें, ये कहां से? मूल स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, यहां पर जिस रूप में कार्य करती है। इसलिए ब्रह्म है विशेष्य और शक्ति है विशेषण, ना? विशेष्य किसको कहते हैं? आनंद, आनंदमय ब्रह्म, रसो वैसह, वो रस स्वरूप है, आनंदमय है, उसका यह स्वरूप है। ये तो हुआ विशेष्य, किंतु इसमें कोई क्रिया नहीं रहेगी, ये क्रिया कहां से आएगी? वो विशेषण से, ये विशेषण उसमें क्रिया को लगा। शक्ति कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगी, उसकी क्रिया होगी, विशेषकर ये चित शक्ति हैं राधा जी। इसलिए कृष्ण में जो क्रियाएं होती हैं, ये सब राधा जी का ये है। इसलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझाने की चेष्टा की, बहुत गंभीर वेद शास्त्र उपनिषद वेदांत सबका सार इसमें बताया, जितना ही इसका विश्लेषण किया जाएगा उतना ही विद्वानों के लिए तो ये सब खुराक हो जाएगी, और भक्त लोग यथाशाध्य थोड़ा बहुत समझ करके भक्ति की प्रक्रिया हृदय में ला करके अपने अंदर में अनुभव करने की चेष्टा करें। ये अनुभव गम्य चीजें हैं। जितना ही हरिनाम किया जाएगा, जितना ही साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवन किया जाएगा, उतना ही ये चीज हृदय में अपने आप आता जाएगा, और दूसरे प्रक्रिया से नहीं होगा। हम व्याकरण पढ़ लेंगे, न्याय पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे और इसको जान लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। वो सब इसको कुछ सहायता, जब तक कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं बस उतना ही तक। प्रेम की अनुभूति के लिए, प्रेम का विकास करने के लिए ये सब चीज़ नहीं, वो तो साधु संघ और जिनके अंदर में ये भक्ति है, जिन ग्रंथों में इसका ऐसा वर्णन है, उन्हीं चीज़ों के सहायता से ये आ सकता है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीलारस आस्वादित धरे दुई रूप, दो रूप कौन, एक जो उनमें रस की प्रक्रिया को आरंभ कर रहा क्रियावती है उसका एक अलग रूप रख दिया, वही स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका जी, और जो रस वैश्य सत अनंतम ब्रह्म आनंदम अयम ब्रह्म, वो ब्रह्म एक उसका, दोनों रूप शक्ति का दो रूप में प्रकाश है, अमूर्त और मूर्त। अमूर्त रूप में सब समय शक्ति में विद्यमान रहती है, अमूर्त रूप में शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में वो विराजमान। जैसे नदी जो है ये अमूर्त है, इसमें राधा जी, इसमें यमुना जी अमूर्त रूप में है, और इसके जल के अधिष्ठात्री के रूप फिर वो विशाखा या यमुना जी है, तब कृष्ण की प्रिया है। अमूर्त रूप में कृष्ण में रहती हैं, और जब वो मूर्त होती हैं तो राधा जी रूप में, किंतु ऐसा भी समझो ये राधा जी मूर्त रूप में राधा के रूप में रहने पर भी कृष्ण से अलग नहीं है, उनमें भी है। अच्छा, राधा जी भी कृष्ण में सब समय है, और कृष्ण भी जो शक्तिमान है वो राधा जी में है, एक दोनों के बिना दूसरे की अनुभूति नहीं की जा सकती। जैसे मृगमत कस्तूरी और उसका गर्भ, फिर अलग अलग क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, वेदों में ऐसा कहा गया, शक्ति का कहीं वर्णन किया गया, शक्तिमान का वर्णन किया, कभी कृष्ण को और जीवों में उनकी शक्ति में और शक्तिमान में भेद भी कहा गया, अभेद भी कहा गया, भेद भी है अभेद भी है। किसी दृष्टि से वेदों में शास्त्रों में बतलाया ये भेद है, और किसी दृष्टि से बतलाया अभेद है, किंतु सब समय याद रखना जीव और ब्रह्म जगत से ब्रह्म का जो भेदाभेद ये मूल चीज नहीं है, शक्ति और शक्तिमान का भेद और अभेद है। प्रेम भक्ति सिखाई थे आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार कर, इसका हमने व्याख्या की है। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार, यही तो पंचम श्लोक है अर्थ, यहाँ तक भी सब हो गया था। और अवतारे आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण एई कार्यनी, कृष्ण तो रस है शास्त्रों में बतलाया, किंतु राधा जी उसमें मिलकर के क्रिया करने से तब ये रसिक शेखर आस्वाद भी बन जाते हैं। अच्छा, किंतु अन्नो अन्न वो उनका आस्वादन करते हैं और वो उनका आस्वादन करते हैं, इसलिए दो रूप में, ये मत समझो ये कृष्ण ही केवल आस्वादन करते हैं राधा जी नहीं, दोनों दूसरों को आस्वादन करते हैं, इसलिए दो रूप धारण किए। रसिक शेखर कृष्ण यही कार्य निज, रस का आस्वादन करना और रस स्वरूप होना ये उनका निज है, किंतु मेरे विचार से थोड़ा सा इसमें ये एक शब्द में तो व्यक्त नहीं कर सकते, रसिक शेखर का होना राधा जी का उनमें होना जरूरी है, नहीं तो रसिक शेखरत्व कभी नहीं आ सकता, आस्वादन का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो रस स्वरूप है केवल ना, आस्वादन करने की लालसा जब जगेगी जबकि उसमें स्वरूप शक्ति प्रवृत्ति हो। अति गूढ़ हेतु यही भाई, यही अति गूढ़ हेतु है, सुनने से भी समझ में नहीं आएगा, चीनी में मिठास क्यों क्यों है, निम में कड़वापन क्यों है, कोई हेतु है, बनावट है, कपड़े में सुगंध है, ये क्या चीज, ये भी स्वाभाविक है ना, लोहे में आग है ये भी स्वाभाविक है, लोहे में ताप है, ये स्वाभाविक है कि नहीं?
पंचभूत में पांच भूत नहीं रहेगा, ये मूर्ति का विकार है, किति आप कहीं कहीं नहीं रहेगा उसमें?
लोहे में ताप ये स्वाभाविक है कि नहीं? गर्म लगेगा कि नहीं पकड़ने से? किंतु कभी कभी लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं आगंतुक। आगंतुक माने बस ये कुछ क्षणों में कपड़े में रुई में कोई इतर लगा करके दिया, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सेंट है। कब तक के लिए?
जब तक
उड़ जाने के बाद में वो रुई रह जाएगी, सुगंध नहीं रहेगी। ये आगंतुक हैं किसी विशेष कारण से। नीम का जो कड़वापन है वो आगंतुक नहीं है, पानी का जो तरलता है और अग्नि का जो ताप है ये स्वाभाविक है, किंतु होने पर भी ये जड़ीय चीजें हैं, ये दूर हो सकती हैं। किंतु चित जगत में कोई भी चीज है वो स्वाभाविक है, कृष्ण की स्वाभाविक शक्ति है राधा की, ये चीज को समझना है। गोपियों को समझाने से वो कहेंगे ये सब अलग रखिए, ये सब जरूरत नहीं है, ये केवल हमारे समझ में नहीं आता है,
दिमाग खराब होता है
इनके लिए, ये सब चीजें नहीं। वो कृष्ण को देख करके तैयार करती हैं, कृष्ण उनको, उनके लिए बहुत काफी है, स्वाभाविक है। जिनको नहीं है उनको ये चीज बतलाने के लिए, उसके लिए भक्ति का अभ्यास करने के लिए ये सब चीजें बतलाई जा रही। स्वरूप गोस्वामी ने जो उनके अंतरंग हैं तहां ते जाने न प्रभु, ये सब प्रसंग वही ये सब जानते हैं, उन्होंने अपने कर्चाओं में प्रकाशित किया, उसी को चैतन्य चित्तामृत में लिखा गया। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, वो जो कहा ना जो अनुप्रवेश राधा जी का कृष्ण में, कृष्ण का उनमें, इसलिए राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, प्रभु के अंतर की अभिलाषा समझो अथवा तीन वांछा समझो, या उनमें स्वरूपतः है भावकांति राधा भाव राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंत अंत से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। उनके मिलन में सुख, विरह में दुख, इसी प्रकार से उन्होंने दिखलाया है। कृष्ण लीला में मिलन है, कृष्ण लीला में मिलन है, और अंत में कृष्ण लीला के अंत में विरह है। महाप्रभु जी मिलन का कम विरह का अधिकांश भाव लिया, विप्रलम्भ रसार रस की मूर्ति है। जब कभी कभी विप्रलम्भ होता है, क्यों? अंतर में मिलन का आनंद अनुभूत होने पर जब वो हृदय से विस्फूर्ति हो जाता है उस समय विरह होता है। पहले मिलन का होगा, मिलन कभी हुआ ही नहीं, आप फिर विरह हो जाए ऐसा नहीं। जीवों का अधिकार इसमें अधिक है। अभी कृष्ण से हम कृष्ण को नहीं देख रहे, किंतु हृदय में एक वृत्ति है भाई। क्या वृत्ति है? इस पर सुख विचार कीजिए। बच्चा जन्म लेने से या हम लोग बड़े होने पर सुख की एक प्रवृत्ति हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीव जंतु जितने हैं सबके अंदर में है। ये कहीं से नए रूप में नहीं आती। कोई हम कार्य करते हैं उसमें सुख की अनुभूति करते हैं, ये सुख की अनुभूति ये क्या चीज है? क्या चीज है? एक लठिया में क्यों नहीं है? एक पत्थर में क्यों नहीं है? एक लकड़ी सूखी हुई लकड़ी में क्यों नहीं? चेतन मात्र में ये प्रवृत्ति रहेगी। ये है क्या चीज? यही राधिका के द्वारा जीव में निक्षिप्त की हुई उनकी शक्ति है। यही शक्ति को यदि हम बढ़ाने की चेष्टा करें तो यही बढ़ करके जीव का धर्म अणु होने पर भी ये एकदम बहुत बृहत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैव धर्म में एक प्रश्न आया है, जीव है अणु और इसका धर्म कैसे हो गया, पूर्ण कैसे हो गया? जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, ये ठीक है ना, और कृष्ण से भेद और अभेद दोनों है, दोनों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। जीव साधन करते करते एक स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके स्वरूप का ज्ञान उदित हो जाता है उसके हृदय में, उस समय में यह अनुप्रवेश होने लगता है परस्पर। उस समय में जीव अणु रहने पर भी कृष्ण के संबंध से उसका धर्म, कृष्ण जितने हैं ना बड़े और उनका धर्म जैसा है ऐसा अनंत अखंड हो जाता है। जैसे कोई लता अपने वो जिस पर फैलती है वो जितना ही ऊंचा होगा उतना ही ऊपर में उछली जाएगी, फैलती जाएगी, और आधार उसका नहीं है फैलने का, उसमें सिमटी रहेगी। ये भक्ति का इसी प्रकार से है, अणु है स्वभाव उसका स्वरूप, किंतु यही जब कृष्ण का आश्रय पा जाती है, स्वरूप शक्ति का आश्रय पा जाती है, तो यह महाभाव इत्यादि तक ये उपस्थित होकर कृष्ण को मुग्ध कर लेती है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जगत में जितना दुख होता है, एक साथ में एक कोटि बिच्छू डंक मारे, आग में किसी को जलाया जाए या और दुख हो सकते हैं, इन सब दुखों को एकत्र कर इसको लाख गुणित किया जाए, लाख से गुणा किया जाए, उसमें जो दुख है उससे भी महाप्रभु जी को राधा के कृष्ण के राधा के विरह में उसे अधिक दुख समझते थे। और जगत में जितना भी ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मानंद से लेकर के जितना भी आनंद है, सब आनंदों को एकत्रित करके कोटि गुणित किया जाए, उससे भी कृष्ण मिलन में उनका सुख है, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए महाप्रभु जी के ऐसे सब भाव होते थे जो कहीं नहीं देखे गए न सुने गए। अपने हाथ से 8-10 हाथ लंबा हो गए, हाड़ सब अलग अलग हो गए, गोल कछुए की तरफ में बन गए, अंग प्रत्यंग सब उनके भीतर में चले गए, और फिर कीर्तन करने के बाद में 5 घंटे के बाद में जब बाह्य स्फूर्ति आई, राधा इत्यादि जी का ऐसा हुआ होगा, किंतु शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। महाप्रभु जी ने उन्हीं भावों को दिखलाया जैसे ये सब राधा जी में पहले प्रकट हुए थे, जो अभी महाप्रभु जी में हुए। शेष लीला जाए प्रभु कृष्ण विरह उन्माद भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय पाद। अंतिम लीला में जब गंभीरा में रहते थे, कभी कभी स्वरूप दामोदर उनके पास में आते थे, उस समय में कृष्ण विरह में उन्माद इनको हो जाया कर। उन्माद माने क्या? उन माद, मद से माद, मद से जैसे अपने को आदमी भूल जाता है, ऐसे अपने ये मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण को भी भूल जाता, कृष्ण को भी भूल जाता और चैतन्य महाप्रभु जी का, और राधा भाव में ग्रह होकर के ये भी भूल जाता थे मैं राधा, उन्मादग्रस्त इसको कर। केवल विरह का भाव उसमें रहता है, जैसे आनंद में केवल कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना सो रमणी ना सो रमन, दोनों एक होकर के केवल आनंद की अनुभूति उसमें रह जाती है और कुछ की नहीं। ऐसे ही महाभाव रस राज में ऐसे ही महाप्रभु जी का हो जाता था, उन्माद और भ्रम में चेष्टा। भ्रम में चेष्टा क्या? यही प्रेम वैचित्र्य, प्रेम वैचित्र्य भ्रम में चेष्टा है। क्या भ्रम में चेष्टा? चेष्टाएं उनकी सब भ्रम में, गोवर्धन किसी पहाड़ को देखा, भ्रम में चेष्टा हुई, दौड़े गोवर्धन की तरफ में, किसी महिला को गान करते हुए देखा गोपी गीत गोविंद का, बड़े बेग से दौड़े पकड़ने के लिए, ये गोपी, मैं भी गोपी राधा राधा हूँ और ये मेरे कानों में अमृत ढाल रही है, बस उस गोपी का आलिंगन करो, ये भ्रम है। जैसे राधा जी के पास श्री कृष्ण बैठे हैं, मधुमंगल आया एक भ्रमर को बहुत दूर तक खदेड़ दिया लठिया से, बोला जी अब कभी भी मधुसूदन नहीं आएगा। कृष्ण के साथ में गलबहिया बैठी हैं और उनको क्या भ्रम हुआ, कह रही हैं गलबहिया डाले हुए कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, एकदम उन्मत्त हो गए। कृष्ण ने देखा जी तो अजीब अवस्था, इसलिए उनको छोड़ करके सदा के लिए चले गए द्वारका में। हमारे रहने से इनको उद्दीपना होगी और उद्दीपना होने पर ऐसे ही इनकी स्थिति होगी, मैं इनको किसी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकूंगा। और नहीं रहने से चिंतन करते 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 ऐसा भाव आएगा कि कृष्ण से मैं मिल गई, हंसेंगी खाएंगी खेलेंगे, तो इसलिए विरही अच्छा है। इसलिए ये भ्रम में चेष्टा, जैसे द्वारका के महिषियों का बतलाया गया, कृष्ण सो रहे हैं रात में, कुरूरी पक्षी रो रही है, करी अरे तू रो रही है, तुम भी कृष्ण के लिए रो रही है, हमारे जैसे विरह में तुम ऐसी मत हो गई। समुद्र का गर्जन सुनकर कहा अरे समुद्र तुम तो पुरुष, तुम भी कृष्ण के लिए रो रहा है, इतना गर्जन कर रहा है मैंने रो रहा है, तरंगे आ रहे हैं तुम्हारे अंदर में भी ऐसी भाव हमारी जैसी आ रही, मेघ को देख करके वैसे कर रहे हैं, हंस को देख करके ऐसे कर रहे हैं, पर्वत को भी देख करके, इस तरह से ये सब भ्रम है चेष्टा। महाप्रभु जी ने नदी देखा और देख करके दौड़े, यमुना जी उसमें राधा और कृष्ण विहार कर दौड़ करके कूदने गए, कृष्ण की स्मृति आ गई, ये भ्रम है चेष्टा। कहाँ नदी और उसको मान रहे हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं ये यमुना नहीं है, और महाप्रभु जी मान रहे हैं हमारे लिए भ्रम है, किंतु उनके लिए वो ठीक है स्वरूप में है। और सदा प्रलापमय बात, प्रलाप अनुलाप संलाप इत्यादि तरह के 10 तरह के ये संलाप है, तो ये सब सदन राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शन है, उद्धव जी का दर्शन करके श्रीमती राधिका के जैसे भाव हुए थे, सही भावे मत प्रभु रहे रात्रि जी। इस प्रकार से रात और दिन कभी उनका बुखार नहीं उतरता था, मद नहीं उतरता था, दिन रात उसी में लगे। हम लोग यदि एक मिनट भी कहीं ऐसा होना तो अपने को सौभाग्यवान समझ, धीरे धीरे बढ़ाने की चेष्टा करें, ऐसे तन्मय हो जाए, ये है साधन। इसीलिए हम लोग सब कुछ छोड़ करके आए हैं इन सब साधनों में प्रविष्ट होने के लिए, कोई भी दूसरी अन्न अभिलाष न रहे, बस इसी में डूबने की चेष्टा करें। महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग भी उसी प्रकार से साधन भजन करके क्रमशः इस उन्नत स्थिति का अनुभव कर सकें। आज यहीं तक रहे।